ओम शांति। वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता, पूरे विश्व को पवित्रता के सकास की है, क्योंकि चारों तरफ दुख और अशांति बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। चारों ओर चार प्रकार की आग दिन प्रतिदिन भड़क रही है। एक तरफ विकारों की आग है, हर एक मानव आत्मा किसी न किसी विकार के वशीभूत उसके अग्नि में जल रही है, तप रही है। दूसरी तरफ विनाश ज्वाला की आग बहुत भयंकर रूप से व्यक्तियों को चिंतित कर रही है, परेशान कर रही है। किसी के आगे भी भविष्य स्पष्ट नहीं दिखाई देता, चाहे वो अचानक प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, चाहे व्यक्तियों के द्वारा निर्मित विनाश की सामग्री अंदर अंदर एक दूसरे को भयभीत कर रही है। जितनी भी भविष्यवाणियां आती हैं वो विनाश की ओर इशारा करती हैं, लेकिन इसके बाद क्या होगा उसके विषय में कोई भी बताता नहीं है। केवल बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि बच्चे, ये कलयुग की दुनिया का विनाश होगा, सृष्टि का विनाश नहीं होता। ये कलयुगी सृष्टि परिवर्तन होती है, अंधकार जाता है, प्रकाश की सत्युगी स्वर्णिम दुनिया आती है। इसलिए ये विनाश ड्रामा की नोंधी हुई भावी है, इसको कोई भी टाल नहीं सकता। और ये आग दिन प्रतिदिन भड़कनी ही है, कलयुग के विनाश की ये सब तैयारियां हैं। और तीसरी तरफ हम सब देख रहे हैं देह संबंध और पदार्थों में लगाव, ममता एक आग की तरह भड़क रही है। व्यक्ति अपने आप को ही नहीं पहचानता है, मैं कौन हूं। ये आग भी बहुत भयानक और दुख देने वाली है। संबंध जिनको अपना समझते हैं उन्हीं संबंधों से दुख और धोखा मिल रहा है, वही संबंध कलयुग में बंधन बन गए हैं। वही पदार्थ, वही वस्तुएं जो सुख के लिए थी वो दुख का कारण बन रही हैं। और चौथी तरफ व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, अप्राप्ति और पश्चाताप की आग के अंदर लोग जल रहे हैं, इच्छाओं के पीछे भटक रहे हैं। जब चारों तरफ विकारों की आग, विनाश की आग, लगाव दबाव की आग और इच्छाओं की आग में व्यक्ति झुलस रहे हैं, उनकी आंच, उनकी सकास मेरे में ना आए, अगर मुझे किसी को मदद करनी है तो मुझे खुद पहले सेफ होना पड़ेगा। अगर मुझे पवित्रता की सकास से इन आत्माओं को इनसे निकालना है तो पहले हमें अपने अंदर की अंश मात्र भी कोई आग हो तो उसे समाप्त करना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने हम सबको इसकी बहुत सुंदर भिन्न भिन्न विधियां बताई हैं। मैं सार रूप में आपके आगे रखता हूं। पवित्रता की सकाश देने की विधि को भी बाबा ने जो सुनाई है वो आपको बताऊंगा। लेकिन अगर विकारों की आंख से हमें बचना है तो उसके लिए अपने अनादि और आदि स्वरूप को बार बार इमर्ज करना है। मैं किस वंश का हूं, मेरा अनादि वंश परमधाम वाली स्टेज और आदि वंश देवी देवता वाली स्टेज कितनी पवित्र है, कितनी निर्विकारी है, उस स्टेज के आधार से वर्तमान विकारी आग को खत्म कर सकते हैं। दूसरा बाबा कहते हैं विनाश ज्वाला की आग से बचने के लिए निर्भय स्टेज चाहिए, निर्भयता की स्थिति, क्योंकि सबसे ज्यादा विनाश में भय होता है मरने का, मौत का। बाबा ने हम सबको अमर भाव का वरदान दिया। आत्मा अमर है, उसको कोई मार नहीं सकता। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं तो निर्भय स्थिति बन जाती है, विनाश ज्वाला में डर नहीं लगता, भय नहीं लगता। शायद आज जो इतनी इस कोविड के कारण मौतें हुई हैं, कैसे आया और कैसे कम हुआ, क्यों इतनी मौतें हुई, उनका मूल कारण अगर कोई देखे तो सबसे अधिक दिखाई देता है भय। भय के कारण लोग ज्यादा मरे हैं, जो निर्भय रहे हैं वो बच करके रहे हैं। इसलिए बाबा ने इस भयभीत वातावरण में अपने बच्चों को निर्भय बनने का ज्ञान दिया। कभी भी भयभीत नहीं होना, क्या होगा कैसे होगा, बच जाएंगे। और तीसरी आग से बचने के लिए जो ममता की आग है, लगाव झुकाव की आग है, चाहे देह में है, चाहे संबंधों में है, चाहे पदार्थों में है, बाबा को अपना संसार बना लो। बाबा ही मेरा संसार है, सब कुछ बाबा से मुझे प्राप्त हो रहा है। जब बाबा के साथ सर्व संबंध जुट जाते हैं तो आत्मा इन दुख देने वाले दैहिक संबंधों से मुक्त हो जाती है। और बाबा ने जो संगम पर हम बच्चों को प्राप्तियां कराई हैं, उन प्राप्तियों की स्मृति से हम अपने आप को भरपूर कर लें, इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज बन जाएगी। कोई भी गलत कर्म करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति हम नहीं करेंगे, पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो इच्छाएं पश्चाताप करा रही हैं व्यक्ति को। इसलिए परमात्मा बाबा हम बच्चों को कहते हैं, इस समय दुनिया के अंदर ये चारों प्रकार की आग है और उसको सकाश की, पवित्रता के सकाश की आवश्यकता है। आप बच्चे अपने उस स्टेज में बैठकर इन आत्माओं को, पूरे विश्व को इमर्ज करो, इनको सकाश दो। अब इसके लिए कुछ स्थितियां मैं आपको बताता हूं। शुरू शुरू में जो बाबा ने हमारी दादियों से पुरुषार्थ कराया स्थापना के समय, परमधाम का ज्ञान नहीं था, लेकिन उस स्थान को संदेशियां देखती थी तो कहती थी वो सूर्य लोक है, सूर्य का प्रकाश है और बहुत तेज लाइट है, जिसको अखंड ज्योति तत्व कह करके हजारों सूर्यों से तेज है, उसको सूर्य लोक कहते थे। और सूक्ष्म लोक को, सूक्ष्म वतन को चंद्र लोक कहते थे। वहां इतनी शीतलता है, इतनी चांदनी है, उसका वर्णन करते थे। और उसी अभ्यास से योग में चंद्रलोक और सूर्यलोक के अनुभव करते थे। अब हम सब जानते हैं कि ज्ञान सूर्य बाबा सर्व शक्तियों से संपन्न सत्यता की अथॉरिटी हैं, और ब्रह्मा बाबा मां के रूप में चंद्रमा की शीतलता देने वाले हैं। अगर हम बाबा के ज्ञान सूर्य की किरणें और चंद्रमा की, चंद्रमा मां की शीतल किरणें, सत्यता और शीतलता की किरणों से भरपूर करें अपने आप को योग में, योग के अंदर, योग अभ्यास में ये दोनों किरणें लेते अपने आप को भरपूर करके, एक तरफ सत्यता की अथॉरिटी है, सर्वशक्तियां साथ हैं, और दूसरी तरफ शीतल है आत्मा, बिल्कुल कोई भी उत्तेजना नहीं है, पवित्रता की संपूर्ण स्टेज है, आत्मा शीतल बन जाए, कोई भी प्रकार की कर्मेंद्रियों में उत्तेजनाएं ना हो। जब उस स्टेज में हम पहुंचते हैं, आत्मा बिल्कुल प्योर शुद्ध शीतल काया वाली बन जाती, और बाबा की वो सर्व शक्तियां जैसे ऊपर से झरने के रूप से आ रही हैं, तो वो शक्तियां चारों तरफ फैलती हैं, वो पवित्रता की किरणें सकाश का काम करती हैं। इसके लिए हम सबको दो समान स्मृति में रखने चाहिए, दो समान जो बाबा ने बार बार स्मृति में दिलाए हैं, याद कराए हैं, बच्चे आप पूर्वज आत्माएं हो। ब्रह्मा बाबा इस सृष्टि का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। जितनी भी मनुष्य आत्माएं चाहे जिस धर्म में आई हैं, जो भी टाल टालियां पत्ते निकले हैं, उस सब का ग्रेट ग्रैंडफादर हमारा ब्रह्मा बाबा है, और हम बच्चे उनके समान पूर्वज आत्माएं हैं। इस मनसा सेवा के लिए, पवित्रता की सकाश देने के लिए कोई व्यक्ति विशेष को इमर्ज नहीं करना सामने, लेकिन इस कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर बीज रूप बाबा है, तने में हम सब तपस्वी आत्माएं हैं, और इस तने द्वारा पूरे वृक्ष को शक्ति की सकाश मिल रही है, पवित्रता की सकाश मिल रही है। बहुत शुभ भावनाओं से संपन्न संकल्प है, क्योंकि ये पूरी बिरादरी हमारे से ही निकली है, इसलिए कोई भी प्रकार की किसी की भी नेगेटिविटी नोट नहीं है, कमियां नोट नहीं है, ये धर्म ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। अगर पवित्रता की सकाश देनी है तो हर आत्मा को निर्दोष समझना होगा। बहुत शुभ भावनाओं से संपन्न संकल्प चाहिए कि सब आत्माएं मुक्त हों, दुखों से छूट जाएं। पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है, इसलिए ये नहीं कहा गया कि आप शांति की सकाश दो, आप सुख की सकाश दो, लेकिन अगर एक पवित्रता की सकाश पूरे विश्व को मिले, प्रकृति को मिले, तो प्रकृति सतोप्रधान बन जाएगी। आज का तमोगुण जो प्रकृति का हम सब देख रहे हैं, बाबा कई बार कहते हैं बच्चे इन प्रकृति के तत्वों की सेवा करो, बैठ जाओ ऐसे कांत में, पांचों तत्वों को, वैसे देवता की संज्ञा दी गई है क्योंकि देने वाले हैं। शायद एक दृश्य आप सबको याद होगा, जब हमारी दादी जी अव्यक्त हुई थी और बाबा के पास गई, तो पहले इन पांचों तत्वों ने दादी जी का वेलकम किया, स्वागत किया, पांचों तत्वों के देवता स्वरूप में गले हार पहनाए, ऐसा एक दृश्य इमर्ज किया था। गुलजार दादी ने सुनाया था कि जब दादी जी वतन में पहुंची हैं तो पहले पांचों तत्वों ने दादी जी का स्वागत किया, फूल मालाएं पहनाई, और बाबा जब सामने आए तो बाबा ने कहा, बच्ची तूने प्रकृति पर जीत प्राप्त की है, प्रकृति की सेवा की है, इसलिए ये प्रकृति के तत्व भी आपका स्वागत कर रहे हैं। कैसे सेवा की है, क्या किया दादी जी ने? पहले अपनी प्रकृति पर जीत प्राप्त की। एक नेचर भी प्रकृति है, हमारी जो नेचर है, आदतें हैं, उन पर विजय प्राप्त की। फिर इन कर्मेंद्रियों पर, ये भी एक प्रकृति है, शरीर भी प्रकृति है, उस पर विजय प्राप्त की। और बाह्य प्रकृति को शांति पवित्रता की सकास दी, सेवा की। तो ये प्रकृति के तत्व दादी जी का वेलकम कर रहे थे। हम सब वर्तमान समय देख रहे हैं, प्रकृति कितना तांडव कर रही है। समाचार तो सबके पास बहुत रहते हैं, जानते हो देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, चारों तरफ एक अलग प्रकार का हाहाकार का जैसे माहौल हो। कहीं अति बर्फ पड़ रही है, कहीं ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं ज्वालामुखी सुनामी आ रही है, ज्वालामुखी फट रहे हैं, चारों तरफ से एक एक तत्व भी वार कर रहे हैं। और अंत समय में बाबा कहते हैं पांचों तत्वों का एक साथ अटैक होगा। परिवर्तन बहुत बड़ी चीज है, इतने बड़े कलयुगी सृष्टि का परिवर्तन होना है। तो जब पांचों तत्व अपना रूप लेंगे विकराल, तब ये कलयुगी सृष्टि की सफाई होगी। और ऐसे समय में आत्माएं सहज मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लें, सहन करने की शक्ति आ जाए, उसका सामना करने की शक्ति आ जाए, और प्रकृति के तत्व उन्हें दुखी न बना पाए। इसके लिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे पूर्वज बन करके इस पूरे वृक्ष को, इस प्रकृति सहित सर्वात्माओं को सकास दो। लेकिन सकास देने के लिए एक शुभ भावना ही चाहिए, और दूसरा जब एकाग्र चित्त स्थिति होगी, जब हम अपने सकाल तत्व पर विराजमान हो करके हर विकार पर, हर प्रकार की आग पर विजय होगी, आत्मा बिल्कुल शीतल काया वाली होगी, तब वो सकास वहां तक पहुंचेगी। तो एक स्वरूप है पूर्वजपन का स्वरूप, और दूसरा स्वरूप है पूज्यपन का। पूज्य हैं हम सब, जितना संगम पर हमने इस पवित्रता की विधियों को, पवित्रता की गहरी परिभाषा को समझा है और अपने जीवन में इसको अपनाया है, संकल्प स्वप्न में भी जितनी आत्मा स्वच्छ है, पवित्र है, निर्दोष है, वो पवित्रता से संपन्न आत्मा आधा कल्प सतयुग और त्रेता में पूज्य स्वरूप में है, द्वापर और कलयुग में उसकी पूजा होती है, उसके मंदिरों में उनकी पूजा होती है, और मूर्तियों के सामने जाने के लिए, उनके समीप जाने के लिए आत्माएं तड़फती हैं, घंटों लाइन में खड़ी रहती हैं, दर्शन करके प्रसन्न होती हैं, कई प्रकार की कामनाएं लेकर के जाती हैं, और मूर्तियों के सामने जाते ही एक दो सेकंड खड़े होते हैं, तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कौन सी शक्ति है और कहां से वो शक्ति मिली जो मूर्तियों के द्वारा इतनी सब प्राप्तियां हो रही हैं? बाबा ने वो भी कितना गहरा राज सुनाया है कि संगम के समय पर आप बच्चों ने इतना अपने आप को भरपूर किया है, इतना अपने को शुद्ध और पवित्र बनाया है, तब आपके मंदिरों से लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, आपकी मूर्तियों को दर्शन करके प्रसन्न हो रहे हैं। अब वो पूज्य स्वरूप विमर्श करो। कभी कभी मनसा सेवा तो सभी करते हैं, अभी हम दादी जी के लिए विशेष योग कर रहे हैं, मनसा सेवा कर रहे हैं। दादी जी तो योगी, तू आत्मा है, बाबा का रथ है, उनके लिए योग की जरूरत है क्या? एक बार की बात सुनाता हूँ, थोड़ी रमणीक है। जब दीदी जी हॉस्पिटल में थी, दीदी मनमोहिनी की बात सुनाता हूँ, मैं समझता हूँ 18-20 दिन वो हॉस्पिटल में थी और चारों तरफ से योग चलता था, बहुत पावरफुल योग चलता था। लेकिन दीदी अचानक अव्यक्त हो गई, तो लोगों के संकल्प चले कि हमारा योग कहाँ गया, इतना हमने योग किया, अभी हम 2 दिन से योग कर रहे हैं, रोज समाचार आ रहा है दादी जी का स्वास्थ्य अच्छा हो गया है, हो रहा है, काफी प्रोग्रेस हो रही है, आज भी मैसेज आया है। योग की शक्ति बहुत कमाल करती है। लेकिन जब दीदी अव्यक्त हो गई तो ब्राह्मणों के अंदर थोड़ी हलचल हो गई, हमारा योग क्या हुआ। तो बाबा ने फिर संदेशी को संदेश में बताया कि बच्चों ने जो योग किया, दीदी को योग की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जिस स्थान पर दीदी को जाना था, कलयुग के अंदर जन्म लेना था, तो जन्म स्थान के माता पिता और उस वायुमंडल को परिवर्तन करने में बच्चों के योग ने बहुत कमाल किया। समझ गए कि आपने यहां योग किया, दीदी योगी थी, लेकिन जहां उसका जन्म हुआ उस स्थान को पावन बनाना, उस स्थान के वायुमंडल को चेंज करना, उसमें सब बच्चों ने बहुत योगदान दिया। तो इसलिए ये निस्वार्थ भाव से जो कुछ हम कर रहे हैं, हमारी कामनाएं बड़ी शुभ हैं, रिजल्ट क्या होगी उस परिणाम की इच्छा रखे बिना हम योग कर रहे हैं। हमारी भावनाएं, हमारी दादी जी हमारी छत्र छाया हैं, हम सब के ऊपर उनकी सकाश है, वो स्वस्थ रहें, वो हम सब के बीच में रहें, बहुत ऊंची भावनाएं हैं। और उसके आधार से हम उस भावनाओं से सब ब्राह्मण आत्माएं उसी शुभ संकल्प से बैठते हैं, बाबा को सर्जन के रूप में, वैद्य के रूप में आवाहन करते हैं कि दादी को सब शक्तियां मिले और जल्दी जल्दी स्वस्थ हो जाए। परिणाम की इच्छा नहीं रखना है, लेकिन वो स्वस्थ हो जाए यह शुभ भावना जरूर रखनी है। तो अपने पूज्य स्वरूप को इमर्ज करो, अपने पूर्वज स्वरूप को इमर्ज करो। और कभी कभी बाबा कहते हैं बच्चे ऊंची चोटी पर आ जाओ, पहाड़ी पर आ जाओ, सूक्ष्म वतन की, मूल वतन की ऊंचाई पर आकर के ऊंची स्थिति से बाबा की सकाश लो और चारों तरफ उस सकाश को फैलाओ। आसन है कमल आसन, योगियों का आसन कमल आसन है। कमल आसन क्या है? बहुत हल्कापन, कोई भी बोझ नहीं है, न्यारी और प्यारी स्थिति में बैठ करके, बहुत न्यारी प्यारी स्थिति है। और उस न्यारी प्यारी स्थिति में कमल आसन पर ऊंची स्टेज पर बैठकर ऐसे लगता है जैसे बाबा की सब शक्तियां मेरे अंदर प्रवेश हो रही हैं, मैं आत्मा भरपूर हो रही हूं और सब शक्तियां फ्लो करके चारों तरफ जा रही हैं। तो ऐसी पवित्रता की किरणें बाबा से लेकर चारों तरफ विश्व के कल्याण के प्रति पवित्र वाइब्रेशन फैलाना, हर आत्मा सुख शांति संपन्न हो, मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर ले, बाबा से अपना वर्षा ले ले, ऐसी शुभ भावना के साथ हम सकाश देते हैं। तो सब बैठो अभी ऊंची स्टेज में, 5 मिनट के लिए बाबा ज्ञान सूर्य के रूप में, ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा के रूप में ऊपर से मुझ आत्मा को सकाश दे रहे हैं और मैं सत्यता और शीतलता से भरपूर आत्मा चारों ओर पवित्रता की किरणें फैला रही है। ऐसे सुंदर समान में स्थित होकर एक सर्च लाइट की तरह चारों तरफ पवित्रता की सकाश फैलाओ।
तुम्हारा प्यार ओ बाबा, ओ बाबा,
ओ
प्यारे ओ बाबा, सुखों का सार देता है।
तुम्हारा प्यारे ओ बाबा, सुखों का सार देता है।
तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, बने पावन सरस जीवन दिखते, बस तुम्ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा,
thank you.
जिसे तू मिल गया बाबा नशा सितारों पर वो चलता
प्यार